عزیزان کیا عزیزان،
آپ کی اس توجہ کی قدر کرتے ہوئے، آپ کے اس قیمتی وقت کو سمجھتے ہوئے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ علمی نکات بتا دیے جائیں۔ اسماعیلی مذہب وہ ہے جس میں علم کے خزانے موجود ہیں، علم کے سرچشمے ہیں، علم کی اعلیٰ باتیں ہیں۔ تو لیجیے میں ایک مثال آپ کو پیش کرتا ہوں۔ مومن ہر وقت خدا کے بارے میں سوچتا ہے اور اپنی روح کے بارے میں سوچتا ہے، اور امام کا حکم بھی یہی ہے کہ تم روح کے بارے میں سوچو۔ خیر، اس میں سوچنے کے مختلف طریقے ہیں، کوئی کس طرح سوچتا ہے اور کوئی کس طرح سوچتا ہے، لیکن سوچ کے ان طریقوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم علم کی اعلیٰ سطح پر سوچیں۔ اور میں آپ کو ایک طریقہ پیش کرتا ہوں سوچنے کا۔ آپ ایک آدمی کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کی تصویر لیتے ہیں۔ آپ اس شخص کی جو تصویر لیتے ہیں تو اس تصویر میں اور اس شخص میں کتنا فرق ہے؟ یہ ایک میں سوال آپ سے پوچھتا ہوں، اس کے بعد جو کچھ بتانا چاہیے میں بتاؤں۔ تو مومن خدا کی ہستی کی ایک تصویر ہے، یعنی ہم میں سے ہر ایک اپنی روح میں، اپنی روحانیت میں، اپنی ہستی میں، اپنے وجود میں خدا کی ایک تصویر۔ اب آپ سوچئے کہ اصل جو سرچشمہ ہے، جو سورس ہے، وہ کیسا ہے اور تصویر کیسی ہے۔ آپ نے کسی آدمی کی تصویر لی تو اس آدمی کے مقابلے میں اس شخص کے سامنے یہ تصویر کتنی بے جان سی چیز ہے، سوچا آپ نے؟ یہ فرق ہے۔ یعنی ہماری روحوں کا جو مشترکہ سر چشمہ ہے، جو مونوریلزم کا مقام ہے، یا جو خدا کی ہستی ہے، یا جو نور کا سر چشمہ ہے، اس میں سے ہم پیدا ہو گئے۔ اس طرح بالکل جس طرح ایک شخص نے ایک کیمرہ مین نے ایک تصویر لی، لیکن کیمرہ مین تصویر میں اس آدمی کو کس طرح ڈال سکتا تھا، یا تصویر کو آدمی کی طرح کیسے بنا سکتا تھا؟ چلیے اس سے بڑھ کر ایک اور مثال پیش کریں۔ یہ تو کیمرہ مین ہو گیا، ایک دوسرا شخص ہے جو فلم لیتا ہے۔ اس تصویر میں اور اس فلم میں بڑا فرق ہے کہ فلم میں حرکت ہے اور آواز بھی ہے اور بہت کچھ ہے، لیکن پھر بھی یہ فلم کہاں اور وہ چیز کہاں جس سے یہ فلم بنائی گئی، یعنی وہ آدمی کہاں اور آدمی کی فلم کہاں۔ آدمی کے مقابلے میں فلم ایک بھی حقیقت چیز۔ یہ دو مثالیں ہو گئی۔ اب ان دو مثالوں کے بعد تیسری بات کو سنیں جو بہت ہی اہم ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ تصویر کو لوٹا دیں جس کی یہ تصویر ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ تصویر اس آدمی سے ملا دیں واپس، کیا یہ ممکن ہے؟ ناممکن۔ یا آدمی کی جو فلم آپ نے لی تھی، اس فلم کو واپس آدمی سے ملا کر اس کے ساتھ ایک کر دینا چاہتے ہیں، ممکن؟ ناممکن۔ کیوں اور کس طرح؟ اور کوئی وجہ بھی نہیں ہے۔ آدمی جو ہے وہ اپنے آپ جیسا ہے، تو وہ اس کے لیے کہاں محتاج ہے کہ اپنی تصویر کی ایک کاپی کو واپس اپنی شکل سے جوڑ لے، یا اپنی فلم کو واپس اپنا لے اور اپنی ہستی کے ساتھ، اپنی شکل و صورت کے ساتھ، اپنی گفتگو کے ساتھ، اپنی ہر چیز کے ساتھ اس کو ایک کرے۔ کیوں؟ اس سے نہ تو کوئی کسی چیز کا اضافہ ہو جائے گا، یہ بات ممکن ہے؟ آپ نے سوچا، اس سوال کو سوچا تو میں اصل مقصد کو بیان کروں گا۔ یہی بات ہے ہماری، یہ ایگزسٹنس جو اس دنیا میں ہے اور ورلڈ ایگزسٹنس جو خدا کے ساتھ مل کر ہے، ایسی ہے کہ وہ اس سے بے نیاز ہے کہ اس ہستی کو واپس لے۔ اور واپس ہونا یوں ہے کہ ہم صرف اس کو سمجھیں، یعنی اس کی بے نیازی کی شان کو سمجھیں کہ وہ اس کے لیے محتاج نہیں ہے، اس جز کو ملائیں۔ ہمارے ائمہ حضرات صلوات اللہ علیہم اور ہمارے پیر بزرگ جو ہم کو بتاتے ہیں कि ये रूह, रूह का खतरा वापस समंदर से जा मिलता है। ये एक मिसाल है, जा मिलना मारिफत के तौर पर है, इरफानी तौर पर है, जा मिलना इल्मी तौर पर है। अगर आप आज इस इल्म को समझते हैं, इस थ्योरी को जेनशीन कर सकते हैं और उसकी बिनियाजी को, बिनियाजी की शान को समझते हैं, तो यकीन कर ले कि आप बुरा एक तरह से इल्म यकीन के मकाम पर वापस हो जाते हैं। ये है वापस हो जाना। तो वहां पर एक ख्याल जाता है, हमारी रूह नहीं जाती, हमारा जिस्म भी नहीं जाता है, तसव्वुर जाता है, इल्म जाता है। तो कुरान के अंदर है एक मखसूस आयत में जो बहुत शानदार है कि तुम्हारा वापस होना भी ऐसा है जैसे तुम्हारा पैदा हो जाना। तो कैमरामैन ने आदमी की जो तस्वीर ली थी उस वक्त उस आदमी से क्या चीज कट कर नीचे गिरी थी, आप मुझे बताइए। सिर्फ एक इमेज था। अगर आप ये साबित कर सकते हैं कि तस्वीर लेते वक्त कैमरामैन ने जब पोज बनाया तो उस वक्त आदमी में से कुछ एनर्जीज या कुछ अज्जा, कुछ पार्ट और कुछ चीजें कैमरे में बंद हो गए, तो फिर लाजमी है कि इन चीजों को वापस जाना चाहिए। अगर आपके सामने कोई ऐसा सबूत नहीं है कि आदमी की शक्ल से कोई चीज कटकर अलग होकर, जुदा होकर उसकी हस्ती से, उसकी एग्जिस्टेंस से कोई चीज अलग होकर आ गई है फिल्म में या तस्वीर, तो फिर बात लाजमी ये होगी कि वापस भी इसी तरह से जाए। हमारी जो हकीकत खुदा के साथ मिलकर है वो हमेशा से मिलकर है, अब भी है। ये हमारी जो हस्ती है, ये जो शुऊर है, सिफली यानी निचले दर्जे की, ये एक शुऊर है। तो शुऊर यानी पैदा हो सकता है उसकी रोशनी में और उसके इल्म के तहत, लेकिन जो हमारी असली खुदी है, जो असली अना है, जिसको अपने मकाम से हटना नहीं है, जुदा होना नहीं है, वो तो इस वक्त भी है। अगर हम इल्म की रोशनी में इस मसले को समझे, इस बात को जाने, तो हम महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं, यकीन कर सकते हैं कि हमारी खुदी, हमारी अना, हमारी आय, हमारी एक लतीफ हस्ती जो पाक और निवत्तर है, वो खुदा के नूर के साथ अब भी मौजूद है। और मेरे नजदीक ये मसला इतना अहम है, हो सकता है कि इस एक बयान से बाज हजरात के जहन में जरा दुश्वारियां पैदा हो जाएं, और जो इनके पास अपने जाती नजरियात हैं, तस्वुरात हैं, या इनके पास जो पहले का इल्मी जखीरा है उसके साथ इसका थोड़ा सा तसादुम हो, मुमकिन है। इसलिए उनको ये मसला होगा समझने के लिए, जहाँ तक कि चंद बार इस अहम पॉइंट पर डिस्कस ना करें। और बाकी मैं समझता हूँ कि जिन हजरात ने इस बहस को कई दफा सुना है और किताबों में इसको पढ़ा है, तो उनके लिए इस मसले को समझना दुश्वार नहीं है। और मैंने जो एग्जाम्पल पेश की, इसको हमेशा अपने सामने रखें कि आया कैमरामैन जो है वो आदमी की जब तस्वीर लेता है उसमें क्या अमल होता है, क्या एक्शन होता है, किस तरह उसकी क्या कैफियत बनती है, क्या या ये तस्वीर जो है आदमी के मुशाबा है या कमतर है। और फिल्म को सोचें कि आया आदमी की फिल्म जो है वो बिल्कुल आदमी है या उसका एक शेडो है, इस चीज़ को सोचें। और इन दोनों चीज़ों को वापस आदमी से मिलाना है तो आप किस तरह मिला सकते हैं, इसको सोचें। और क्या हाजत है और क्या ज़रूरत है कि आप इस तस्वीर को, कागज़ की तस्वीर को आदमी से मिलाना चाहते हैं या फिल्म को उससे मिलाना चाहते हैं। तो अगर आप मिलाने में कामयाब भी हो जाएं तो आप ये बताएं कि उसमें कुछ इजाफा हो जाएगा आदमी में, क्या उसमें कमी थी जब कि उससे एक तस्वीर ली गई थी या फिल्म ली गई थी, उसमें कोई कमी वाक़ा हो गई? नहीं, कमी वाक़ा नहीं हुई। ये बहुत अच्छी मिसाल है और इस जैसी मिसाल आपको कहीं से नहीं मिलेगी। तो अगर आदमी की एक तस्वीर नहीं, हजारों तस्वीरें बनाए फिर भी आदमी की शक्ल सूरत में, उसकी हस्ती में, उसकी कुव्वतों में कोई कमी वाक़ा नहीं होती है। तो नूर का जो सच चश्मा है उसकी मिसाल ये है, उसमें कोई कमी वाक़ा नहीं हुई इस कायनात के बनाने में और इतने सारे इंसानों के वजूद में आने के नतीजे में उसमें ज़रा भी कोई कमी वाक़ा नहीं हुई कि उसको पुर करने के लिए हम वापस उसके साथ जाएं। जा मिलने की जो बात है वो समझने के काबिल है और वो हाइएस्ट नहीं है, और यानी वो उसके ऊपर भी तौहीद की तालीमात है। कुरान में जो तालीमात हैं आपने बहुत सी मिसालों में कुरान की तालीमात सुन रखी हैं, लेकिन वो दर्जावार है। कोई बात यहाँ की है, 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 कोई बात यहाँ की है। और जो मुअल्लिम है वो जानता है कि यानी ये जो तालीम है आखिरी है या दरमियानी है या इब्तदाई है, वो इसका अंदाजा कर सकता है। तो आप जरूर ये तसव्वुर रखें कि कुरान जो है एक यूनिवर्सिटी की तालीमात की तरह वसी है और उसमें अलग अलग दर्जात की तालीमात हैं। लिहाजा आप कुरान की कोई भी बात मानते हैं इस तसव्वुर से माने के हो सकता है कि इसके ऊपर भी कोई बात हो, ताकि आपको ऊपर जाने में कोई दिक्कत पेश न आए। कुरान ही में है कि खुदा ने सीढ़ियों का तसव्वुर दिया है। खुदा फरमाता है कि वो ज़िल मआरिज है, यानी सीढ़ियों वाला है, सीढ़ियों वाला है। तो अगर खुदा सीढ़ियों वाला है तो ये इल्म की सीढ़ियां हैं, मारिफत की सीढ़ियां हैं, यकीन की सीढ़ियां हैं, गोया कि दर्जे हैं। और आपको ये मानना होगा कि दर्जे हैं, दर्जात कुरान में इसका भी जिक्र है कि दर्जात, जिस तरह इस कायनात के अंदर हर चीज को आप दर्जात में देखते हैं, इंसानों को भी दर्जात में देखते हैं और इस्लाम को भी दर्जात में देखते हैं, इस्माइलियत को भी दर्जात में देखते हैं। तो दर्जात हैं, आपको इन दर्जात में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। ये चंद बातें बताना चाहता था, और हालांकि अब प्रोग्राम का बहुत सारा हिस्सा बाकी है, इस वास्ते मैं अपनी गुफ्तगू को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, यारी मदद।